बिल्डिंग हुई थी उसमें तकरीबन 58 मिलियन के करीब लोग थे और अभी तक जो हो चुके हैं इन पर्सन या के इन मेल से हो चुके हैं 58.6 मिलियन लोग जो हैं ऑलरेडी बैलेट्स डाल सके हैं और अभी भी ऊपर जा रही हैं ये
give you a latest on that they just passed 60 मिलियन
हाँ तो बस ये ऐसे ही है ये ऊपर जाता जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि 2016 से भी ज्यादा लोग जो है वो बाहर निकल के अब आ रहे हैं ईरान के अंदर जनाब कंडीशन बहुत ही ज्यादा पतली होती जा रही है एंड इट इज absolutely mind-boggling what is going on in that country kyunki unke jo aaj deputy health minister hain Iraj Harirchi unhone aaj kaha hai ki the disease is killing 300 people a day which means one person every 5 minutes is dying in Iran of coronavirus
exactly
और वो कह रहे हैं कि हमारे हेल्थ सिस्टम्स जो हैं बिल्कुल दे आर फेलिंग एब्सोल्युटली एंड वी कैन नॉट यू नो कंटिन्यू लाइक दिस हिंदुस्तान टाइम्स की जनाब आज एक खबर है और उसमें बताया गया है कि जो एयर पोल्यूशन है इंडिया के अंदर वो अब जो है रोक रही है इनकी जो गवर्नमेंट की जो बीजेपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं जो कोविड 19 की उनको आगे ले जाने के लिए ये एक रिसर्च आई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जिसमें कि ये शो किया जा रहा है कि जो इंडिया के अंदर ये जो एयर क्वालिटी अभी तो जो खराब है वो कह रहे हैं कि नवंबर से लेके फरवरी तक कंडीशन और खराब होगी इसलिए कि इस पीरियड में स्टबल बर्निंग होती है फेस्टिवल के वो क्रैकर्स किए जाते हैं फिर वो जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बढ़ जाती है तो वो कहते हैं जी ये और ज्यादा खराब होगी एंड वी थिंक उनका कहने का मतलब ये है कि द PM2.5 विच इज एसोसिएटेड विद 8% इंक्रीज इन कोविड 19 डेथ्स ये कॉन्स्टेंटली जो है 1 माइक्रोग्राम से ऊपर जा रहा है तो ये बहुत ज्यादा खतरे का बायस है द वायर की आज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी और वो उसके अंदर जो है उन्होंने कहा है एक स्वीडिश बेस्ड कंपनी है वी डेम इंस्टीट्यूट और उसका ये कहना है जो कि इन्होंने कोट किया है द वायर ने और वो कह रहे हैं कि इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग इट्स स्टेटस एज अ डेमोक्रेसी और ये हेडलाइन है उसकी इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो मीडिया को स्पेस दी जा रही है वो बहुत ज्यादा श्रिंक करती जा रही है इसमें 3-4 कंट्रीज उन्होंने किए हैं एक पोलैंड है एक इंडिया है एक यूएसए है और एक ब्राजील है वो कह रहे हैं कि ये वो कंट्रीज हैं जिसमें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो जर्नलिस्टों को पकड़ा जा रहा है वो और जो यहां पे जो एकेडमिक फ्रीडम्स को भी जो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है ये बहुत ऊपर जा रहा है तो ये जो आज इनकी हेडलाइन थी दिस इज क्वाइट अलार्मिंग कि इंडिया इज ऑन अ वर्ज ऑफ लूजिंग इट्स स्टेटस एज डेमोक्रेसी चाइना जो है जी उसको बहुत आज एक्सटेंसिवली हमने ये बताया था ओवर द वीकेंड के जो अमेरिकन जो ऑफिशियल्स हैं जो माइक पोम्पियो साहब और एस्पर साहब जो हैं वो वहां पे गए हुए हैं और आज उन्होंने मुलाकातें की एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंडिया के मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब से और जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब उनके साथ मुलाकातें की और यहां पर चाइना को बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया है उन्होंने कहा है कि चाइना ने जो भी पोलिटिकल सिस्टम जो जियो पोलिटिकल सिस्टम इधर इराके के अंदर उसकी वजह से क्रिएट हुआ है वो काफी कंसर्निंग है इसके अलावा इंडिया ने H-1B वीजा के ऊपर भी बात की टेररिज्म तो आई मीन डेफिनेटली उनका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है तो टेररिज्म के ऊपर भी उन्होंने बात की और इस तरह के बहुत सारे जो स्पेशली इनका जो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट है उसके ऊपर काफी इनकी आज जो है डिस्कशन रही और इसमें सबसे बड़ी बात इंडिया ने जो आज इनको कही है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है उनको परमिट करें यूनिवर्सिटीज में आप जाने के लिए जो आपने वहां पर रोका है बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चीफ जो है जी जनाब देव सिंह उनका कहना है जी कि उन और ये बड़ी एक अलार्मिंग स्टेटमेंट जो कि मैंने NDTV पे देखी है और सिंह साहब का कहना है कि मोदी जी के पास एक पूरा प्लान है टू अटैक पाकिस्तान एंड चाइना वो कह रहे हैं जी कि मोदी जी हैड डिसाइडेड व्हेन इट विल बी टाइम टू गो फॉर वॉर विद पाकिस्तान एंड चाइना वो कह रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने डिसीजंस लिए थे उनके पास पूरा एक एजेंडा और टाइमलाइन था राम मंदिर के लिए आर्टिकल 370 को हटाने के लिए उसी तरह मोदी जी इस चीज के ऊपर भी अब डिसाइड करेंगे कि चाइना और पाकिस्तान पे
ये उसी तरह की धमकियां जिस तरह आपको पता होगा कि लास्ट टाइम इन्होंने पाकिस्तान में बालाकोट पे हमले का बताया था कि जी 300 लोगों को मारा गया है आज तक नहीं बताया गया
तो
उनमें से 2 या 3 लोगों की डेड बॉडीज ही दे देते
तो ये आज इन्होंने कहा है अच्छा जी ये जो चल रहे हैं PDM के वही जो हंगामे पाकिस्तान के अंदर तौसीफ जो चल रहे हैं उसमें आज जो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं श्री मजारी साहब उन्होंने आज बड़ा बुरा मनाया उन्होंने कहा कि आपके जो बयानात हैं वो जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवाल साहब हैं उनसे बहुत मिलते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि जी हम तो जो है बलूचिस्तान के अंदर बड़ी मुश्किलात पाकिस्तान को हैं और ये और वो तो कहते हैं जी आपने भी उसी तरह के बयान दिए हैं तो आप अब हमको एक्सप्लेन करके बताएं कि जी आपका और उनका ऐसा बयान आना क्या जो है कोइंसिडेंशियल है या कि डिलिबरेट है या कि क्या है और इसके अलावा जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं जाम कमाल खान साहब, उन्होंने भी जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो जमात इस्लामी पी के जो थे वहां पे लीडर अवेस नूरानी साहब, उन्होंने भी इस तरह की बात की थी कि उन्होंने कहा था कि जी बलूचिस्तान शायद सेपरेट हो जाएगा या क्या, तो आज बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये नूरानी साहब का क्या मतलब था, इसको ये एक्सप्लेन करें।
ये देखें, ऐसी सिचुएशन है कि जब भी अपोजिशन इस तरह की बात को एक्सप्लॉइट करेगी तो हमेशा इसका रिएक्शन इंडिया से आएगा। वो फौरन रिलेट करेंगे और पाकिस्तान से ऐसा होगा कि कोई भी बात आप इंडिया में करेंगे तो वहां जो अपोजिशन है आजकल खास तौर पर, तो अभी पिछले दिनों जैसे राहुल गांधी ने भी कई ऐसे पॉइंट्स जो पाकिस्तान में कहे गए, जो जलसों में कहा जाता है, या वजीर आजम भी इवन कोई ऐसी बात कहते हैं तो उसको अपने मतलब के लिए, सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी कोई परेशानी की बात नहीं है। और हमारे अपोजिशन के लीडर्स को थोड़ा सा जो कौमी मफाद से रिलेटेड बातें होंगी उसको नेगेटिव नहीं लेके जाना चाहिए। आप बात कर सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर ऐसे हैं जिनमें प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, लेकिन उसका यह मकसद नहीं है कि वो हमारे यहां वहां पे हालात ऐसे ही हैं। और बलूचिस्तान के हालात चंद वर्ष पहले तक कभी ऐसे नहीं थे, उसमें आपको पता है कि वहां कौन कौन से ममालिक की एजेंसीज, कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका बजट है। में चार बड़े ममालिक हैं, वो हमारे लोगों को, दूसरे लोगों को, और आपको पता है कि ये इंटेलिजेंस की जो कहानी होती है, कलभूषण का पूरा एक नेटवर्क जो है वो बलूचिस्तान में था, और अनफॉर्चुनेटली वो आपको पता है ईरान से आया था और उसने पासपोर्ट कौन सा यूज किया था। तो बहुत सारे मसाइल हैं, हमारे वहाँ के मुतलका जो हुकाम हैं उन्हें वो भी देखना है, और अपोजिशन के लीडर्स को जब कभी सियासी हवाले से बात करनी हो तो उन्हें मुल्क की सलामती के हवाले से इतना ज्यादा मुखालफत में नहीं चला जाना चाहिए जो मुल्क के अगेंस्ट में जाता हो। आप सियासी मुखालफत में रहें लेकिन जियो पोलिटिकल हवाले से जब भी आप बात करेंगे तो इंडिया में जो लीडर हैं वो उस बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर।
मगर जो पीडीएम और ये जो कायम हुई है और इसके लीडर हजरात जो हैं पिछले जो जलसे जुलूस करा रहे हैं और जो उसमें तो उन्होंने सिर्फ अपोजिशन नहीं बल्कि अपोजिशन अपने हमारी अफवाज की भी अपोजिशन कर दी और खुल खला के अपोजिशन कर रहे हैं, कोई ये कोई बात कर।
हाँ देखें, आपको मालूम होगा कि मरियम नवाज ने पहली मरतबा जनरल आसिम सलीम बाजवा का नाम लिया, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने दूसरे बड़े बाजवा साहब का नाम लिया, और नाम लेने का अब इस पर एक बड़ी डिबेट हो सकती है। ब्रीफ सी बात यह है कि जो पाकिस्तान में मौजूदा सियासी हालात हैं इसका एक हल निकलता था, उसमें कुछ थोड़ी सी टेक्निकल गलतियां जो हैं वो हुकूमत से भी हुई हैं। देखिए, जब भी आप गैर जानिबदार होकर बात करेंगे, आप पार्टी की पसंदीदगी को साइड पर रख देंगे। हमारे यहां ये होता है कि यहां पर भी पाकिस्तान में भी लोग अपनी ख्वाहिशात को खबर की शक्ल भी देते हैं, अपनी ख्वाहिशात पे वो गुफ्तगू में भी वो यही चाहते हैं कि जो मेरे जहन में दूसरा शख्स वही कहे, लेकिन बात वही करनी चाहिए। जो मसलन मुझे किसी पार्टी से अगर मैं ये समझता हूं कि उन्होंने गलत किया है तो मुझे उसका इकरार करना चाहिए कि गलत किया है। अगर मैं एक पार्टी की हिमायत में बात कर रहा हूं तो एक सेकेंड में पता चल जाएगा। अभी हुकूमत को क्या करना चाहिए था, जो माजी की हुकूमतें करती रही हैं, नवाज शरीफ साहब के दौर में क्या कुछ होता रहा है मीडिया के हवाले से, जरदारी साहब के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में, लेकिन जो पॉजिटिव चीजें थी हकूमत को उसको प्रमोट करना चाहिए था। अभी हकूमत के आप यकीन करेंगे पाकिस्तान के चंद टॉप क्लास के बड़े राइटर्स कॉलम निगार जिन्होंने पीटीआई की हकूमत को या इमरान खान साहब की हकूमत को माजी में और उनके इन दो साल तक बहुत प्रमोट किया। आप उनके, मैं आप नाम भी बता सकता हूं, उनके आर्टिकल पढ़ें, उन्होंने अपने आर्टिकल से अब वो चीजें कहना शुरू कर दी है जो उनसे कोई तवक्कात नहीं कर सकता था। उसकी क्या वजह है, वो मुखालिफ नहीं हुए, वो हकूमत पे तनकीद भी नहीं कर रहे, वो हकूमत को उनकी गलतियों से आगाह कर रहे हैं कि आप ये गलत कर। उसमें क्या होता है, एक सेकंड में लोग ये तो बिक गए हैं जी, इनको तो दूसरी तरफ से याद, हमारे यहाँ बड़ा आसान होता है जी, लिफाफे मिल गए, फायदा हो गया, वो हाँ लेबल लगा दिया जाता है एक सेकंड में।
वैसे तौसीफ भाई,
ऐसा बहुत कम होता है, होता
तो वैसे लिफाफे तो मिलते हैं,
नहीं लिफाफे नहीं,
अवल तो लिफाफों का बहुत पुराना दौर है और हम भी सुना करते थे लिफाफे मिलते हैं लोगों को, लेकिन वो पता है क्या, वो मखसूस लोग हैं उनमें आपको फौरन पता। देखिए, एक शख्स की एक लाइन है, वो उन्हीं के हक में लिखे चला जा रहा है।
फर्क ये है,
पता चल जाता
है, फर्क ये है कि एक जमाने में लिफाफे मिला करते थे, आजकल इंटरनेट के थ्रू
ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन आप ये देखो,
जमीनें मिलती हैं, बंगले मिलते
हैं, मफादात हैं लोगों के, बहुत सारे लोगों के हैं। लेकिन ये मैं कहना चाह रहा था कि मीडिया जो है इतना ज्यादा हुकूमत के जो खिलाफ है, लोगों के जहन में यह है कि दूसरी पार्टी शायद उनको फंडिंग कर रही है। बात फंडिंग की नहीं है, आप अपने आप को इस लेवल पर ले आए कि आपको लोग तनकीद करना कम कर दें। मतलब हुकूमत को बहुत सारे ऐसे काम करने थे जिससे जो देखे आवाम जो है वो वोट किसी को क्यों देते हैं? कुछ लोग सिर्फ इसलिए वोट देते हैं उन्हें वो पार्टी अच्छी लगती है, कुछ लोग नजरिए पे वोट देते हैं, कुछ लोग बरादरीज़म पे वोट देते हैं, कुछ लोग चूंकि उनके आबाओ अजदाद एक अरसे से दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान में वोट देने के जो रिवाज हैं वो कोई 40 से 50 किस्म के हैं। इन मुल्कों में ऐसा नहीं है, इस मुल्कों में कारकर्दगी देखी जाती है। पाकिस्तान में कारकर्दगी भी लोगों को वोट बहुत कम मिले हैं, कई पार्टीज को मिले हैं। आपको याद होगा कि पार्टियों ने जो काम किया लोग याद रखते हैं। पीपल पार्टी को बहुत सारे लोग इसलिए याद रखते हैं कि यार उनके कारकुनों को जॉब्स मिलती हैं, मफादात मिलते हैं। मुस्लिम लीग के दौर में उनके लोगों को तरक्कियां भी मिलती हैं, उनकी एक मखसूस कम्युनिटी को प्रमोशंस भी मिलती हैं, पुलिस में उनके लोग भी आते हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनके लोग आते हैं। अभी खान साहब के दौर में कुछ डिफरेंट, अगर कुछ डिफरेंट होता तो आप यकीन करें लोग इनके लिए बहुत ज्यादा आगे आते। अभी जब मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े बड़े कॉलम निगार जब उन्होंने लिखा, अभी पिछले दिनों इजहारुलहक साहब बहुत ही नफीस कॉलम निगार हैं, बड़े सीनियर, और आपको पता है वो ब्यूरोक्रेट हैं और वो उन्होंने हुकूमतों के साथ काम किया है, और वो जब लिखते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि आपने ये काम अच्छे किए, आपको ये जारी रखने चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। अभी एक पिछले कॉलम में उन्होंने माजरत किया बाकायदा कि मैं 2 साल से और इससे पहले लोगों को कह रहा था कि आप इस हुकूमत को या इस गवर्नमेंट को या नए वजीर आजम को मौका दें, लेकिन अब मैं अपने किए पर थोड़ा सा मुझे पछतावा है।
लेकिन अब ये देखें ना तौसीफ, ये जो वहाँ पे लोग जो जमा हुए हुए थे, अब आप देखें, अब आप तो खुद इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, ये देखें वहाँ पे जमा कौन थे। वहाँ पे जमा थे जी बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजलुर्रहमान, महमूद अचकजई, अमीर हैदर खान होती, ये सरदार अख्तर मैंगल। और आप देखें कि बिलावल साहब वहां पे नारा क्या लगा रहे हैं, यानी वही है वोट लेने के चक्कर में कि जी वो जो बुकटी साहब का जो कातिल है वो तो अभी भी वो ऐसे फिर रहा है।
और भाई आपके आपकी हुकूमत रही, आपने उस दौर में तहकीकात क्यों नहीं करवाई?
कर लेते आप, तहकीकात करा लेते। आपके तो वालिद साहब ने आपकी वालदा की डेथ की तहकीकात नहीं करवाई,
यूएन को बस बुला लिया था उन्होंने और अच्छी खासी उनको रकम दे दी थी और उससे हासिल कुछ भी नहीं हुआ था।
तो अब वहां पे और वहां पे ये नारे लगा रहे हैं चारों सूबों की आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। तो भाई ये
बात ये है कि ये नारे तो हम एक अरसे से सुन रहे हैं और ये मजीद जारी रहेंगे।
अच्छे 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 नारे बना लेते हैं।
अच्छे नारे बना देखें जी, वोट को इज्जत दो। हमने इस दफा अपने उर्दू पोस्ट के अखबार की हमारी लीड थी कि बिलावल का मुतालबा है कि पुलिस की वर्दी को भी इज्जत दो। तो वो अब यानी अब इज्जतों का मामला आ गया है। तो थोड़े अरसे के बाद हो सकता है वो आ जाएंगे, भाई कुछ थोड़ी बहुत सियासतदानों को भी इज्जत दो,
करप्शन को।
एक तो लीडर कह चुके हैं, आपको पता है माजिद भाई, कि एक सिंध के बहुत बड़े लीडर ने टीवी पे बैठ के कहा था कि करप्शन पे सिर्फ आप लोगों का हक है,
हमारा नहीं है, पीपल्स
पार्टी। आप उनके लफ्जों पे गौर करें, उन्होंने ऑन एयर ये कहा था और तस्लीम किया था
आम आदमी को कि करप्शन सिर्फ आप ही नहीं करें, हम भी कर सकते हैं।
नहीं, उन्होंने कहा था,
कह रहे थे दूसरी,
उन्होंने कहा था कि दूसरे सूबों की जो हुकूमतें कर रही है क्या सिर्फ उनको हक पहुंचता है, यानी वो इसको हक मान रहे थे। यानी ये शर्मिंदा और रोने का मकाम था और वो उस पे बड़े हंस हंस के और मुस्कुरा के ये बाकायदा तस्लीम कर रहे थे। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान में यानी सियासत कोई एक लीडर ऐसा है जो कभी ये कहे कि मैं कहे भी और उस पर अमल भी करे कि मैं आवाम की खिदमत के लिए सियासत में आना चाहता हूँ?
ये जो वर्ड आपने यूज किया ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं शाहजहा से कह रहा था कि आप के पाकिस्तान के कोई सियासतदान, मैं कहता हूँ दुनिया का सियासतदान, दुनिया में कोई सियासतदान ऐसा नहीं है, कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं है, चाहे आप यूरोप ले लें, चाहे अफ्रीका ले लें, चाहे आप नॉर्थ अमेरिका ले लें, चाहे साउथ अमेरिका ले लें, या यहाँ ले लें,
सच्चाई तो खैर नहीं मिलेगी आपको
किसी।
अलबत्ता एक चीज, कुछ मिसालें ऐसी हैं
इंटेग्रिटी जरूर मिलेगी
जिन पे आप उनका उनका यानी उनकी गुफ्तगू या उनकी बातचीत या मलेशिया के आप महातीर पे देख लें, कोई ऐसा इल्जाम नहीं है। और हम कई मिसालें दे सकते सकते हैं,
जैसा कि आप इमरान खान साहब ने भी आज कहा है, क्योंकि वो जज वही जो खाके बनाए हैं ना वहां पे, तो उन्होंने भी बड़ा आज कंडेम किया है फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों को, और उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है कि आपकी ये जो हरकतें हैं ना ये इस्लामोफोबिया को और हेटरेट को बढ़ावा देती हैं, तो लीडर इस तरह के नहीं होते हैं। तो आज इमरान खान साहब ने नेल्सन मंडेला का जिक्र किया है, तो उन्होंने कहा कि लीडर वो होता है जो लोगों को जोड़ता है, तो ऐसा नहीं होता है कि जो डिवाइड पैदा कर दे कम्युनिटीज के अंदर। तो मतलब वही बात है वो जो आप कह रहे थे, एक कोई लीडर बता दें, तो ऐसे थे लोग जैसे कि नेल्सन मंडेला की तरह के, क्योंकि आप देखें कि जब जिस वक्त माजिद भाई उनको जेल में डाल दिया गया और जब उनको बाहर निकाला गया, और यानी उन्होंने तो
27
यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट से भी ज्यादा का, तो लोगों को लगता था कि ये तो गोरों के बड़े खून के प्यासे होंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं, सबको मैंने माफ किया। तो ऐसे भी लीडर्स होते हैं माजिद भाई, ऐसे भी होते हैं।
उनका तो बड़ा नाम था, आपने वो किताब तो पढ़ी ही होगी जिसमें एक छोटा सा वाक्य है कि वो एक किसी होटल में अपने स्टाफ के साथ गए थे, तो होटल में जो शख्स उनको डील कर रहा था वो बड़ा घबराहट का शिकार था, तो उनके स्टाफ से किसी ने पूछा कि भाई आप क्यों परेशानी, आपको क्या है, तो उन्होंने कहा कि जी जब नेल्सन मंडेला जी जेल में थे तो मैंने इनके साथ
बदतमीजी की थी,
खासा यानी तजीक खेज आमेज सलूक किया था, तो मुझे अब खौफ है कि अब ये मुल्क के लीडर हैं तो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि जी मैंने तो इस शख्स को जेल से निकलते ही माफ कर दिया था। अब ये देखें कितनी बड़ी एक लीडर की निशानी है कि जो ये कह रहा है, भाई आपके जहन में ऐसा क्यों आया। तो दुनिया में ऐसी मिसालें हैं, हाँ मिसालें कम मिलेंगी और सब करप्ट नहीं होते, कुछ लोग लफ्जों का पास करते हैं, पाकिस्तान में इक्का दुक्का कुछ मिसालें रही हैं, लेकिन बात वही है कि रेशो की चूंकि बात होती है।
इंडिया को देख लें आप, पूरे करप्ट हैं इंडिया में,
बहुत सारे
इंतहा करप्ट लोग हैं। आप बांग्लादेश में उठा के देख लें,
श्रीलंका को देख लें,
आप अफगानिस्तान को देख लें, आप पूरे, मैं उस इलाके की बात कर रहा हूं आपसे कि वो इस इलाके में सारे के सारे एक से एक बड़े से बड़ा करप्ट है वो। और
माजिद भाई आप अगर मेरी, आप इसको प्रेजुडिस भी कह सकते हैं या जो भी, लेकिन जिना साहब के ऊपर हुई माजिद भाई,
नहीं मैं जिना साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी के लोग,
इसमें कोई शक नहीं, गांधी जी भी करप्शन के इल्जाम नहीं थे, ये जो इखलाकी हवाले से आप देखें कायदे आजम का कितना,
क्या बात है जी,
कोई शक ही नहीं है।
कोई शक नहीं। जिस वक्त डेथ हुई तो अपना सारा कुछ दे के कौम के नाम करके चले,
लियाकत अली खान आप देख लें, नवाब थे और उनकी 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 नवाबी के हवाले से मशहूर था कि उनके पास जितनी दौलत थी वो यानी आप तस्वीर नहीं कर सकते थे। आप निजाम ऑफ हैदराबाद देख लें, उन्होंने पाकिस्तान को और जब तकसीम हुई थी क्या कुछ नहीं दिया था,
निजाम और हैदराबाद ने पाकिस्तान का साथ तो नहीं दिया था,
नहीं वो साथ देना चाहते थे, वो करना चाहते थे, क्योंकि जो रेड क्लिफ का जो प्लान था वो बड़ा सिंपल था, ऑल मुस्लिम स्टेट्स टू मेक पाकिस्तान, ऑल हिंदू स्टेट्स टू मेक इंडिया, लेकिन हुआ ये था कि चूंकि हैदराबाद अंदर करके था, उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान के साथ इसका इलाक नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनके साथ इतना बुरा सलूक किया कि निजाम ऑफ हैदराबाद हैड टू लीव, ही फ्लू अवे फ्रॉम इंडिया, भाग गए थे वो वहां से, फिर ऐसे था।
ये तो तारीख में है, बहुत सारी चीजें आपको पता है, जब पार्टीशन हुआ था तो कुछ ज्यादतियां तो की गई थी ना, और वो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से की गई थी, जो आज तक हम भी भुगत रहे हैं और वहां के भी लोग भुगत रहे हैं जो ख्वाहिश रखते थे, आपको पता है पाकिस्तान कहां तक था।
हाँ जी, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनको ये कहा गया था कि प्रिंसली स्टेट्स अपना फ्यूचर खुद करेंगी, तो हैदराबाद वाज रूल्ड बाय द निजाम,
गुरदासपुर का तो अनाउंस हो गया था और वापस करके लिया गया, और आपको पता है कि जी वो जिन लोगों ने अनाउंस किया था उस शख्स को इंडिया में आए हुए चंद महीने हुए थे, वो तो नक्शे से वहां के वाकिफ
नहीं था। जी बिल्कुल
ठीक
बस जी, हम राइट एट द एंड ऑफ आवर न्यूज माजिद भाई,
6:20 पे हमने बस मगरिब की नमाज अजान सुनानी है,
बिल्कुल ठीक तो है जी, हम जल्दी जल्दी ये वाइंड अप करेंगे,
हमारे पास 1:03
बस ठीक है। हमारी जो है जो ये कंट्रोवर्सी क्वीन है जी कंगना रनावत साहब, अब वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के साथ लड़ पड़ी है, तो वो उन्होंने बड़ी वहां पे वॉर ऑफ वर्ड्स हुई, उन्होंने कहा जी आप गांजा करते हैं, तो उन्होंने कहा जी आपको तो पता ही नहीं है हमारी स्टेट में तो गांजा होता नहीं है, ये है वो है, बड़ी उनकी वहां पे लड़ाई चल रही है। और रावलपिंडी स्टेडियम ने जी बड़ा तारीख वो अब जो है वो अब बनाएगा, हिस्ट्री बनाएगा, क्योंकि इट्स गोइंग टू होस्ट 6 इंटरनेशनल मैचेस इन 12 डेज। इससे पहले कभी भी कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ, कोई टेस्ट जो प्लेइंग क्रिकेटिंग जो टीम है कोई नेशन है जिसमें के ऐसा हुआ हो। एंड देन जनाब लास्ट हमारी खबर है इज अबाउट आईपीएल, किंग्स 11 पंजाब जो है उसने आज कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेटों से हराया है।
بہت بہت شکریہ شازیہ جی اینڈ توصیف بھائی, اٹس آلویز اے پلیزر, یو نو آپ کے ساتھ آپ آ کے بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ ہوتے ہیں, اینڈ آپ کی جو باتیں وہ آف کورس مینز اے لاٹ ٹو اس اینڈ پوری جو ہماری لوگ.
نہیں نہیں شازیہ جی نے جی بہت اچھا سب کچھ ہی کور کیا اور آپ بڑے اچھے طریقے سے پروگرام کنڈکٹ کر رہے تھے. ابھی آخری بات چلتے چلتے راول پنڈی اسٹیڈیم کا آپ نے کہا, چونکہ میرا پنڈی سے تعلق ہے, نہیں وہاں میں نے کرکٹ کھیلی بھی ہے, نہیں کھیلی بھی ہے اور کور بھی کی ہے, اور انضمام کا پہلا میچ تھا اور وہ میرے ایک دوست ہیں, ان کی جو ان سے رشتے داری تھی تو ہم لوگ انضمام سے ہی ملنے گئے تھے, اور وہ میچ میں نے پلیئر انکلوجر میں پلیئروں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا تھا, اور اس جگہ پہ کبھی ہم خود کرکٹ کھیلتے تھے تو یہ گراؤنڈ نہیں تھا. اس کے کچھ عرصے کے بعد تو جب سجیشن آئی تھی تو ہم دوستوں سے یا پنڈی ڈویژن کے جو عہدیدار تھے بات ہوتی تھی, تو میں کہتا تھا جب بھی کبھی پنڈی کلب کے بعد کوئی اگر جگہ پہ گراؤنڈ بن سکتا ہے تو وہ یہ جگہ ہے جہاں اس وقت اسٹیڈیم ہے.
بہت بہت شکریہ اگین صاحب. 6:20 اور 22 سیکنڈ ہماری گھڑیوں میں ہو چکے ہیں, اور اب لیے چلوں گا میں آپ کو ٹورانٹو اور گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہوا جاتا ہے, آئیے ہم سب سنتے ہیں مغرب کی اذان.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة ودارة الرفيعة وابأس مقام محمودا الذي وأتى وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سامعین کرام ناظرین, آپ نے ابھی مغرب کی اذان سنی جو ٹورانٹو گرد و نواح کے ٹائمنگ کے مطابق تھی. اب ہم آپ کو لے چلیں گے ایک خوبصورت کلام کی جانب جناب مظفر وارسی کی آواز میں. سماعت فرمائیے. 4166201778 ہمارا فون نمبر ہے.
میرا نبی ہے سیاہیاں مجھ میں گا مجھ میں جلے اسی کے چراغ مجھ میں اساسِ قلب و جان وہی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرے گناہوں پہ اس کا پردہ, وہ میرا امروز میرا پردہ, میرے گناہوں پہ اس کا پردہ, وہ میرا امروز میرا پردہ. ضمیر پر حاشیے اسی کے, شعور بھی اس کا وضع کردہ, وہ میرا ایمان میرا تیقن, وہ میرا پیمانِ تمدن, وہ میرا معیار زندگی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے, وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی, وہ سامنے بھی پسے نظر بھی, وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی, وہ سامنے بھی پسے نظر بھی, وہی مجھے دور سے پکارے اسی کی پرچھائی روح پر بھی, وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو, میں اس کی مٹھی کا ایک جگلو, وہ میرے اندر کی روشنی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے, اسی سے قدموں میں راہ میری, اسی کی پیاسی ہے چاہ میری, اسی کے قدموں میں راہ میری, اسی کی پیاسی ہے چاہ میری, اسی کی مجرم میری خطائیں, اسی کی رحمت گواہ میری.
جی سامعین ناظرین, بس اس کے ساتھ یہ وقت ہوا ہے آپ سے اجازت چاہنے کا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے پروگرام کو سننے کا, پسند کرنے کا, اور بس چلتی ہے چلتے چلتے گزارش ایک التجا جو ہمیشہ کرتا ہوں, ہمیشہ کرتا رہوں گا کہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ہمیں یاد رکھا کریں. ہم آپ کے لیے دعا گو ہوں گے, اب ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خاص طور سے ہمارے دوست ہمارے بھائی مظفر علی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو اپنا سفر مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیں, ان کے درجات کو بلند کرے, انہیں جلتے فردوس میں قضا فرمائے. آمین ثم آمین. بشرط زندگی ان شاء اللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات. اس وقت تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.
WTOR Youngstown, Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birach Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
held the ultimate power in the universe.
The station with the best music. Best music.
I love the music.
I love radio, music, and more.
आप सुन रहे हैं रेडियो साज आवाज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7 हमारी रेडियो और टीवी की सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या फिर आज ही eawaz ऑफिशियल ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कीजिए। eawaz टीवी को आप तमाम IPTV बॉक्सेस पर देख सकते हैं। इसके अलावा आज ही रोकू ऐप अपने स्मार्ट टीवी में डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री। हमारे साथ शामिल रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी हम खूबसूरत, दिलकश, मजाया, मालूमती और मजहबी प्रोग्राम से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एडवर्टाइजमेंट या फीडबैक के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 647-898-6245। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हमेशा की तरह BBC न्यूज से सेरविन के साथ।
मैं हूं आलिया नाज़की। आज सेरबीन का अहम मौजू है। पाकिस्तानी वजीर आजम के बकौल फ्रांसीसी सदर मुसलमानों के जज्बात पर हमला आवर हुए, जबकि फ्रांस अपनी अशिया के बॉयकॉट की अपीलों पर नाराज। बरेजम अफ्रीका पर अमरीकी इलेक्शन का नतीजा क्या असर डालेगा, दिखाएंगे कि सदर ट्रंप के दौरे सदारत में इस खित्ते के लिए अमरीकी खारजा पॉलिसी क्या रही। और कराची में अब एक ऐसा चर्च भी बना है जहां ख्वाजा सरा बिला किसी रोक टोक इबादत के लिए जा सकते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने फेसबुक के सरबराह मार्क ज़करबर्ग को एक खत में मुतालबा किया है कि फेसबुक पर इस्लाम के खिलाफ नफरत आमेज मवाद पर पाबंदी आयद की जाए। एक रोज पहले इमरान खान ने फ्रांसीसी सदर पर इल्जाम आयद किया था कि वो इस्लाम के खिलाफ हमला आवर हैं। इमरान खान ने यह इल्जाम सदर इमानुएल मैक्रों की जानिब से पैगम्बर इस्लाम के तौहीन आमेज खाके दिखाए जाने के हक का दिफा करने के बाद लगाया था। सदर मैक्रों के इस बयान पर शदीद रद्दअमल हुआ है और कुवैत और कतर समेत कई मुल्कों में फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम चलाई जा रही है। बॉयकॉट की अपीलों के बाद फ्रांस ने मशरिक़ वुस्ता के ममालिक पर जोर दिया है कि वो बकौल फ्रांस एक रेडिकल अकलियत की जानिब से बॉयकॉट के मुतालबात को रोकें। तफसील के साथ उमर आफरीदी।
फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने हालिया दिनों में पैगम्बर इस्लाम के तौहीन आमेज खाकों की इशाअत का दिफा किया था और कहा था कि मजहब इस्लाम पूरी दुनिया में बहरान का मजहब बन गया है। इस पर पाकिस्तान और तुर्की में सियासी रहनुमाओं ने फ्रांस के सदर को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाया है। मुस्लिम रहनुमाओं का इल्ज़ाम है कि फ्रांस लोगों की मजहबी आज़ादी के हक का एहतराम नहीं करता। पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी ट्वीट में कहा है कि बदकिस्मती से उन्होंने तशद्दुद पर आमादा दहशतगर्दों की बजाय इस्लाम पर हमलावर होकर इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम से नफरत की हौसला अफजाई का रास्ता चुना है। इमरान खान ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि सदर मैक्रों ने जानबूझकर मुसलमानों को मुश्तइल करने की राह इख्तियार की है और इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज खाकों की नुमाइश की हौसला अफजाई करके सदर मैक्रों ने करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। पाकिस्तान की हिजब इख्तलाफ जो इन दिनों हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने में मसरूफ है, वो भी इस मामले पर हुकूमत की हमनवा बन गई है।
हम आपके इस किए हुए तौहीन आमेज रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं।
तुर्क सदर रजब तैयब अरदोगान ने अपने फ्रांसीसी हम मनसब को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपना जहनी मुआयना करवाएं। उन्होंने यूरोप को उसका माजी याद दिलाया।
हमारी किताबों में न तो फिस्तायत है और न नाजी इज्म। हमारे यहाँ समाजी अदल है और हम इसी समाजी अदल के सहारे जिंदगी गुजारते हैं।
सदर मैक्रों के हालिया बयानात के बाद बहुत से मुस्लिम ममालिक खासतौर से मशरक़ वस्ता में फ्रांसीसी मस्तूआत के बायकॉट की मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। फ्रांस की वजारत खारजा का कहना है कि फ्रांस की मस्तूआत के बायकॉट के बेबुनियाद ऐलानात को रेडिकल अकलियत की जानिब से हवा दी जा रही है। عمر آفریدی، بی بی سی نیوز۔
فرانس کی مصنوعات کے بوائیکاٹ کے بارے میں بات ذرا دیر میں کریں گے، لیکن پہلے فرانس کی دارالحکومت پیرس چلتے ہیں، جہاں سے اس وقت صحافی محمد یونس خان ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ محمد یونس خان صاحب، سربین میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو یہی بتائیں کہ یہ سارا معاملہ ہے فرانس میں، اس سب کو جو بوائیکاٹ کی باتیں ہیں یا سفارتی تنازع سے کھڑا ہو رہا ہے، وہاں اسے کتنا بڑا مسئلہ تصور کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں، یہاں پہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور حکومت کے درمیان اتنی زیادہ حلیج حائل ہوئی ہے۔ پہلے کوئی بھی معاملات ہوتے تھے تو انفرادی عمل ہوتا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مذہبی انتہا پسند ہیں جو کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو بیان آیا ہے وہ تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بین الاقوامی سطح پر بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہاں پر بھی جو مسلمان ہیں ان میں تشویش پائی جاتی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ کس کسی بھی شخص کے ذاتی فعل کو پوری مسلمانوں کے فعل کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔
آپ نے فرانس میں رہنے والے مسلمانوں کی بات کی، میں دراصل آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ فرانس میں خاصی بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، وہ اس سب کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی وہاں تشویش بڑھ رہی ہے مسلمان آبادی میں؟
جی بالکل، یہاں پہ دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے، 60 سے 70 لاکھ کے قریب یہاں پہ مسلمان آباد ہیں۔ جو پچھلے کچھ دنوں سے جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، جو حکومتی سطح پہ بیانات آ رہے ہیں، اس حوالے سے مسلم جو اکثریت علاقے ہیں، جو مسلمان کمیونٹی ہیں، ان میں انتہائی تشویش پائی جا رہی ہے، اور حکومت کے جو بیانات ہیں اس حوالے سے ان کی جو چیزیں ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی آ رہی ہے، اور یہاں پہ مختلف جگہوں پر احتجاج بھی ریکارڈ کیا گیا
ہے۔ یعنی وہاں جو مسلمان آبادی ہے وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب اس ٹیچر کا قتل ہوا تھا تو اس کی مذمت تو سب ہی نے کی تھی۔ میں یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ خاکوں کے بارے میں جو ایک ناخوشی ظاہر ہے مسلمان آبادی میں وہاں ہے، کیا اس کا اظہار واقعی ایک منظم طریقے سے اب ہوتا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیں، جس طرح یہاں پہ ٹیچر کا جو قتل ہوا ہے، اس حوالے سے مسلمانوں نے بھی احتجاج کیا تھا اور اس قتل کو انہوں نے کنڈم کیا تھا، لیکن یہاں پہ جب آپ کچھ مسلم علماء سے بھی بات کرتے ہیں یا کسی دوسرے مسلمانوں سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو اس حوالے سے حکومت ہمیں کچھ نہیں کہتی، ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرتی، جبکہ کسی بھی شخص کے جو فرد واحد کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ اور حکومت فرانس اس ٹائم نے ایک یہاں پہ مسجد بھی بند کی ہے، 100 سے زیادہ لوگ بھی یہاں پہ گرفتاری عمل میں آئی ہیں، اور 50 سے زیادہ اسلامک جو یہاں پہ تنظیمیں ہیں اس کے حوالے سے بھی انکوائری چل رہی۔ تو یہ ساری جو مجموعی چیزیں ہیں یہ مسلمانوں میں تھوڑا بہت یہاں پہ بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے، اور یہ حالات میں یہاں پہ 20 سال سے ہوں، یہ میں نے پہلے کہیں کبھی نہیں دیکھی یہ چیزیں۔
پیرس سے محمد یونس خان صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ فرانسیسی مصنوعات کا بوائیکاٹ کتنا مؤثر ثابت ہوگا، اس سے حاصل کیا ہوگا، اور فرانس اس بارے میں کتنا فکر مند ہے، اس بارے میں بات کرنے کے لیے بی بی سی اردو کے ہمارے ساتھی ثقلین امام بذر اسکائپ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ ثقلین، سب سے پہلے تو یہی بتائیں کہ اس طرح کے جو بوائیکاٹس ہوتے ہیں مصنوعات کے، کیا وہ واقعی مؤثر ثابت ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر فرانس اتنا فکر مند کیوں ہے؟
دیکھیے، آپ نے صحیح کہا کہ اب تک جو بائیکاٹ کیے گئے ہیں، پہلے سے آپ کو یاد ہوگا ڈینمارک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کی مہم چلائی گئی تھی، جب سب سے پہلے انہوں نے یہ کارٹونز توہین آمیز جو تھے وہ شائع کیے تھے، لیکن وہ کامیاب مہم نہیں ثابت ہوئی تھی۔ اور اس مرتبہ بھی اگر آپ کل فرانس کے تجارتی حجم کو دیکھیں تو یہ دنیا بھر میں کوئی تقریباً 563 ارب ڈالرز کی برآمدات کرتا ہے، اور اس میں مسلم ممالک کا جو حصہ ہے وہ شاید 1% کے قریب بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کا بائیکاٹ کرنا کبھی بھی زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوگا، لیکن اس کے برعکس جب یہ جہاں پہ جن ممالک میں امپورٹس ہوتی ہیں یعنی درآمدات ہوتی ہیں ان پہ زیادہ برا اثر پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت کویت میں ان کی سب سے بڑی ایکسپورٹس ہو رہی ہے کسی مسلم ممالک کے سے، اور بلکہ اس سے زیادہ قطر کے ساتھ ابھی کا حالیہ حجم جو بڑا ہے، لیکن اگر وہاں پہ اور وہیں پہ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے جو سٹورز ہیں جہاں پہ ان کی خاص طور پہ خوراک والی غذا والی چیزیں جو ہیں بٹر ہے اس طرح کی چیزیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے مارکیٹ سے سٹور سے، تو اس سے نقصان لوگوں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ تو امکان یہ ہے کہ یہ بائیکاٹ چلے گا تو، لیکن اس کا جو فکر مندی کی وجہ ہے وہ فرانس کے دیکھ رہا ہے اس کے سیاسی اثرات جو مسلم ممالک پہ مرتب۔
اچھا، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو بوائیکاٹ کی بات ہے ترکی کی طرف سے ہوئی ہے، تو کیا عرب ممالک ایک غیر عرب رہنما یا ایک غیر عرب ملک کی طرف سے کہی جانے والی بات کو مانیں گے بھی؟
یہ بہت اہم بات ہے. اس وقت اگر آپ عرب دنیا میں دیکھیں تو جیسا روایتی طور پہ عالم عرب کا رہنما کچھ لوگ کہلاتے تھے, اس وقت عالم عرب کا کوئی بڑا رہنما قابل ذکر نہیں ہے جس کو آپ ناصر جمال عبد الناصر کی طرح یا صدام حسین کی طرح یا حزب اللہ کی طرح یا حافظ الاسد کی طرح ان جیسے یا یہاں تک کہ حسن مبارک کی طرح کے بھی کسی بڑی قد آور شخصے کو دیکھ سکے. اس وقت سعودی عرب کی قیادت ان کے ولی عہد کر رہے ہیں محمد بن سلمان اور انہی کے مخالف اب انہی کے ایک ساتھی جو ہیں وہ محمد بن زید سلطان یعنی ابو ذہبی کے جو ہیں سربراہ وہ ہیں. تو یہ سب مل ملا کے عرب ممالک میں کیونکہ قیادت کا فقدان ہے, لہذا مذہب کے نام پر جو ایک اشتعال پیدا ہوا ہے یا جذبات برانگیختہ ہوئے ہیں اس میں ترکی اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کا خطرہ یا جس کی ناپسندگی کا اظہار عرب ممالک کی طرف سے ہو رہا ہے.
ثقلین امام ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. تجارت اور غیر ملکی امداد میں کٹوتی سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ برعظم افریقہ اب امریکہ کی ترجیح نہیں رہا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور صدارت میں کبھی بھی برعظم کا دورہ نہیں کیا. افریقہ کے بارے میں امریکہ کی خارجہ پالیسی کا خمیازہ برعظم کے ہزاروں افراد خصوصاً خواتین کو بھگتنا پڑ رہا ہے. بی بی سی نے ان میں سے کچھ سے جنوبی افریقہ کے لیسوتھو شہر میں بات کی. نومسا مسیکو کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں.
یہاں کاروبار عروج پر ہے. سینکڑوں مزدور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لباس تیار کر رہے ہیں. یہ امریکہ اور افریقہ کے درمیان تجارتی معاہدے کی وجہ سے ہے جو 40 افریقی ممالک میں ملازمتوں کو قائم رکھنے میں مدد کرتا ہے. افریقہ کی نمو اور مواقع ایکٹ اے جی او اے نے یہاں لیسوتھو میں ٹیکسٹائل کی صنعت کو بحال کرنے میں مدد فراہم کی ہے, لیکن اس میں خامیاں بھی ہیں.
AGOA is benefiting the FDI, foreign direct investors.
AGOA براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا فائدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ تمام رقم ان کے بینک اکاؤنٹس میں براہ راست چلی جاتی ہے. AGOA ایک موقع ضرور ہے لیکن اس سے لیسوتھو کو کبھی براہ راست فائدہ نہیں ہوا.
ہو سکتا ہے کہ امریکہ 2025 میں AGOA معاہدے کی تجدید نہ کرے. یہاں کے لوگ پریشان ہیں, وہ سب اپنی ملازمت سے محروم ہو سکتے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں اپنا کام بند کرنا پڑے گا کیونکہ ہم بیرونی دنیا سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے.
اور یہ صرف تجارت نہیں ہے. 2017 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسی پالیسی کو دوبارہ متعارف کرایا جو اسقاط حمل کی سہولیات فراہم کرنے یا اس کی حمایت کرنے والی تنظیموں کے لیے فنڈز پر پابندی عائد کرتی ہے, جیسا کہ یہ کلینک. اس کے بعد سے افریقی ممالک میں حمل گرانے کے کیسز میں 40% اضافہ ہوا ہے جو امریکی امداد پر منحصر ہیں.
People who benefited,
اس سے فائدہ اٹھانے والے افراد اب ان خدمات سے محروم ہیں. نتائج سنگین ہیں کیونکہ ہم انچاہے حمل کی بڑھتی ہوئی شرح کی بات کر رہے ہیں, خاص طور پر نوجوان جوڑوں کے ساتھ ساتھ نوجوان لڑکیوں میں.
پورے افریقہ میں اس طرح کے کلینک مجبوراً بند کیے جا رہے ہیں کیونکہ امریکہ نے مالی امداد میں کمی کر دی ہے. اب اس علاقے میں خواتین کو مانع عمل کا سامان نہیں مل سکتا, لہٰذا واشنگٹن میں کیے جانے والے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں افریقہ کی بہت سی خواتین کے پاس اب کوئی مدد نہیں ہے. ملیرا ٹونیا ان میں سے ایک ہیں.
مانع حمل کا سامان لینے کے لیے میں ہر ماہ کلینک جاتی تھی, لیکن اب مجھے یہ خریدنے پڑتے ہیں کیونکہ کلینک بند ہے. یہ سامان ہر ماہ خریدنے کی میری حیثیت نہیں ہے, مجھے ڈر ہے کہ میں حاملہ ہو جاؤں گا.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی افریقہ میں دلچسپی نہیں ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ کو افریقہ سے کوئی مطلب نہیں ہے, انہوں نے یہاں کا دورہ تک نہیں کیا ہے, اور اگر دوبارہ منتخب ہو بھی گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بر اعظم کا دورہ کریں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطہ قابل توجہ نہیں ہے.
یہ واضح ہے کہ افریقہ کم ہی امریکہ کی ترجیح رہا ہے جس نے چین کے لیے راستہ چھوڑ دیا ہے جو اب امریکہ کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے. اس سڑک سمیت بر اعظم کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر چین کے بڑے فنڈز کی مدد سے ہوئی ہے. صدر ٹرمپ کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی چین افریقہ میں ایک بڑا پلیئر بن گیا تھا, اور اب ٹرمپ کے دور صدارت میں یہاں اس کا اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے. چین پورے افریقہ میں سڑکیں, بندرگاہیں, ہوائی اڈے بنا رہا ہے اور خطے میں اپنی موجودگی کو مزید مضبوط کر رہا ہے. اگرچہ صدر ٹرمپ کا مشن امریکہ کو عظیم بنانا ہے, لیکن ان کی انتظامیہ دنیا کی تیز رفتار ترقی پذیر خطوں میں سے ایک اس خطے سے دور ہوتی جا رہی ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کے آئندہ صدارتی انتخابات کے نتائج کا افریقہ کے لیے کیا مطلب ہوگا.
پاکستان کے شہر کراچی میں مسیحی خواجہ سراؤں کے لیے حال ہی میں پہلے چرچ کی بنیاد رکھی گئی ہے. پاسٹر غزالہ شفیق نے اس کام کے لیے ہولی ٹرینیٹی چرچ کے حدود میں واقع اپنے گھر کے احاطے میں جگہ بنائی. ایک اندازے کے مطابق کراچی میں قریباً 2000 مسیحی خواجہ سرا آباد ہیں. کراچی سے صحافی شمائل خان کی رپورٹ.
اے خداوند تیرا نام ابدی ہے.
آرزو ایک مسیحی خواجہ سرا ہیں جنہیں عام چرچ میں عبادت کے دوران امتیازی سلوک کا سامنا رہا.
جب ہم چرچ میں جاتے تو شیروانی وہاں پہ دی جاتی تھی تو کہتے تھے یہ پاک نہیں ہے, آپ یہ پاک نہیں, اس کو شیروانی نہیں دی جائے گی. تو ہم اندر سے بہت مایوس ہو جاتے تھے. ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ سب لوگوں کو یہاں پاشرکت وغیرہ مل رہی ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہمیں, اور نہ ہمیں بائبل وغیرہ چھونے کی اجازت تھی. کہتے تھے کہ یہ لوگ جو نا وہ صحیح نہیں ہے, یہ خواجہ سرا ہیں.
وہ پورے جوش و خروش سے سروس میں حصہ نہیں لے پاتی تھیں.
بائبل پڑھنے کو دل کرتا تھا کہ میں جا کے آگے جا کے کلام کروں, بائبل پڑھوں, گیت گائیں جیسے دوسرے گاتے ہیں. ہمارا بھی دل کرتا ہے, ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آگے جا کے دعا کریں, بائبل پڑھیں, لیکن ہمیں موقع نہیں ملتا تھا, ہم بہت مایوس ہوتے تھے.
کراچی میں اندازاً 2000 مسیحی خواجہ سرا آباد ہیں. بیت الخواجہ سرا مومنین چرچ کے نام سے ان خواجہ سراؤں کے لیے پہلی بار ایک غیر رسمی چرچ کی بنیاد رکھی گئی ہے. یہ چرچ غزالہ شفیق کے گھر کے احاطے میں قائم ہے.
میں چاہتی ہوں کہ ٹرانسجینڈر پاسٹرز ہوں, ٹرانسجینڈر یوتھ لیڈرز ہوں, ٹرانسجینڈر بائبل ٹیچرز ہوں, ایک مضبوط چرچ کی فاؤنڈیشن شروع ہو جائے.
خواجہ سرا کمیونٹی اس غیر رسمی چرچ کے قیام سے خوش اور مطمئن ہیں.
میرے اس میں کمیونٹی کے جو خواجہ سرا بہت خوش ہیں, انہوں نے تھینکس کیا ہے, خداوند کا شکر ادا کیا ہے کہ ہمیں یہ چرچ بننے کے لیے مل رہا ہے. دعا کرتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. میری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ بہت خوشی خوشی سے آ رہے ہیں, دعا کرتے ہیں
کیونکہ ہم تیرے بیٹے بیٹیاں ہیں. تو ہمارا
خواجہ سرا کمیونٹی اس غیر رسمی چرچ کے قیام سے خوش اور مطمئن ہیں. غزالہ شفیق نے چرچ آف پاکستان سے اعلیٰ مذہبی تعلیم حاصل کی, لیکن انہیں مسیحیوں کے ایک مسلک پینٹیکوسٹل چرچ نے پاسٹر بنایا. پینٹیکوسٹل چرچ کی طرف سے مقرر کی گئی پاسٹر غزالہ شفیق کے مطابق خواجہ سراؤں کے ساتھ مذہبی تعصب کے رویے میں آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے. مختلف چرچ خواجہ سراؤں کو بغیر تعصب کے اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی آزادی دینے کے لیے مدعو کر رہے ہیں.
آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج کے سیربین کا بڑا موضوع تھا فرانسیسی صدر میکرون کی طرف سے پیغمبر اسلام کے خاکوں پر دیے گئے بیان کے بعد فرانسیسی مصنوعات کے بوائیکاٹ کی اپیلیں. صدر ایمینیول میکرون نے پیغمبر اسلام کے توہین آمیز خاکے دکھائے جانے کے حق کا دفاع کیا تھا. صدر میکرون کے اس بیان پر شدید رد عمل ہوا ہے اور کویت اور قطر سمیت کئی ملکوں میں فرانسیسی مصنوعات کے بوائیکاٹ کی مہم چلائی جا رہی ہے. آج سیربین میں اتنا ہی, آلے ناس کی کوئی اجازت دیجیے.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
آپ CIBC Global Money Transfer کے ساتھ بہت ہی آسانی سے اپنے گھر سے ودیش پیسے بھیج سکتے ہیں, وہ بھی زیرو ڈالر ٹرانسفر فی پر. آپ پیسے آن لائن یا CIBC کے موبائل ایپ سے بھیج سکتے ہیں. آج ہی اپنا پہلا ٹرانسفر کریں اور پائیں $50. ادھک جانکاری کے لیے cibc.com/transfer پر جائیں.
کہتے ہیں کہ مایا کو کھینچے مایا کر کر لمبے ہاتھ. ہیری سون دا میجسٹک مارگیج کے ساتھ ریزیڈینشل کمرشل مارگیج ری فائنینسنگ آپ نے کرنی ہے, کسی قسم کی انویسٹمنٹ پراپرٹی لینی ہے, سارے بینکرز اور لینڈرز کے ساتھ ڈیپ تعلقات ہیں ان کے. آپ کو فائنینسنگ کا بندوبست بھی ہو جائے گا اور چارجز بھی کوئی نہیں دینے پڑیں گے. ہیری سون جی بڑی کمال کی تگڑم لڑا سکتے ہیں. بس آپ کال کر لیجیے اور پیسے کا رینج ہو جائے گا. $228 سے $1000 مہینہ کیسے بچا سکتے ہیں؟ کال ہیری سون now 647-228-1000 228-1000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
Asian Food Center 905-793-1338. Aapke kitchen ki tamam zaruriyat ek hi chhat tale. Fruits and vegetables, groceries and staples, bread, dairy and egg, beverage and confectionery, branded foods, personal care and household, sweets and samosas. Order now for in-store free pickup. 905-793-1338. Home delivery is also available. Asian Food Center 905-793-1338. Asian Food Center.
कर लेना हो या फिर रिस्क करना हो, हर फार्म सफर को कॉल करो,
तीन दशमलव करने का डर हो के दादा,
हर फार्म सफर को कॉल करो।
बरसों से जाना पहचाना काबिल एतमाद नाम रियल स्टेट की किसी भी जरूरत के लिए कॉल कीजिए 6478986245 6478986245 सिटी स्केप रियल स्टेट की।
खाने का इंतजाम तो बहुत ही जबरदस्त है और मेन्यू भी कमाल का है, बनाया भी कितना लजीज है।
ये सब कमाल है किराना हट का। दावत हो तो किचन बहुत खूब करते हैं और अगर वैसे बाहर खाना खाने को दिल चाहे तो समझो हर उम्र की पसंद किराना हट पर मौजूद। और हाँ, एक और बात, इस खाने के बाद गारंटी नो हार्ट बर्न।
किराना हट का मुझे भी नंबर दें, हमारे यहाँ कोई ना कोई मेहमान आता ही रहता है।
किराना हट मिसेस सागा में, बस कॉल कर लीजिए 9054058383
डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट। दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इवन अगर इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस के इंटरसेक्शन पे और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्टलर के इंटरसेक्शन पे। बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट बनाइएगा, साजो आवाज का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा। डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट 9054578661। सोना यानी गोल्ड खरीदना या बेचना है तो एक काबिल एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स याद रखिएगा। असलम या इकराम भाई से मुलाकात कीजिएगा। हाथ के बने हुए या मशीनी जेवरात, इतनी वैरायटी है चूड़ियों और करों में, चेन्स में, आप सोने की खरीदारी के लिए एक बा एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स विजिट जरूर कीजिएगा। प्रोग्राम का रेफरेंस देंगे तो डिस्काउंट भी है और सोने की रिपेयर कोई चार्ज नहीं। रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड मॉल्टन में, रूबी ज्वेलर्स।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगे आसान। 11 साल से ज्यादा तजर्बा और एक भरोसा मंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659 6479235659। लाइसेंस नंबर 10530।
पिंड दा मजा हुन कैनेडा विच वी। कैलेडन सब्जी फार्म तो ताजा हरियां ऑर्गेनिक सब्जियां दे नाल हरी मिर्च, लौकी, करेले, बैंगन, मूली, मेथी, धनिया, साग, मटर, गाजरां, करेले, खीरे ते शलजम ते होर भी बहुत सारी सब्जियां खुद अपने हत्था नाल उगा के बेचते हैं ताडे लई। अपना फार्म ते अपनी ही दुकान अज ही पहुंचो। कैलेडन सब्जी फार्म 12050 एयरपोर्ट रोड कैलेडन एयरपोर्ट एंड मेफील्ड रोड 9059653633 9059563633।
ब्रैम्पटन फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को जरूरत है नए फायर फाइटर्स की, आज ही अप्लाई करें। ब्रैम्पटन फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में मुलाजमत सबके लिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए brampton.ca/firerecruit।
कोविड 19 का समाधान आप से ही शुरू होता है। बीमार महसूस करने पर यदि हल्के लक्षण हों तब भी घर पर ही रहें और अन्य लोगों से दूर रहें। नजदीकी संपर्क केवल अपने घर के सदस्यों तक सीमित रखें और अन्य सभी लोगों से 2 मीटर की दूरी रखें। सार्वजनिक जगह पर फेस मास्क लगाएं, बार बार अपने हाथ धोएं। कोविड 19 को सीमित करने और रोकने का हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। याद रखें, इसको फैलने से रोकने की शुरुआत आप ही से होती है। अधिक जानकारी के लिए ontario.ca/coronavirus पे जाएं। इसके लिए ओंटेरियो की सरकार द्वारा भुगतान किया गया है।
Messages and chit-chat.
मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। प्यार की उम्र हो इतनी सनम।